इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला रिबा को मिटाता है। ये दूसरी हुज्जत लिख लीजिए, पहली क्या थी, हर्रम अल्लाहु रिबा। अब ये दूसरी दलील है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी की है, क्या कि अल्लाह मिटाता है, यम हक, महक का लफ्ज़ है इसके अंदर छुपा हुआ, मिटा देना, वाइप आउट करता है, उसकी मत मारता है, कि अल्लाह ताला सूद को जड़ों से उखाड़ देना चाहता है। और वह यूरोबिस सदकात, और सदकों को परवान चढ़ाता है। यूरबी का लफ्ज़ रिबा से है, ये लफ्ज़ दोनों में एक ही है, रिबा और यूरबी में। इधर मुराद है परवान चढ़ाना, बढ़ाता है अपने, इसको अच्छा करना चाहता है। कैसे? इस जुमले को दो तरह से आप समझेंगे। एक तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि वो कानून बने, वो तरीके इख्तियार किए जाएं कि जिससे सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए और सदकात का रिवाज आम हो जाए। एक मतलब ये है जो भी कुछ सिंपल समझ में आ रहा है। और दूसरा इसका मफहूम क्या है कि जिस माल में सूद का माल जमा हो जाएगा वो बिल आखिर अल्लाह के हुक्म से मिट जाएगा। यम हकुल्लाहु रिबा, जो माल सूद वाला होगा वो कभी फले फूलेगा नहीं। और इसके बारे में आम कहावत है कि सूद खोर पर 40 साल से ज़्यादा अरसा नहीं गुजरता कि उसके माल पर महक आ जाता है। महक ये जो लफ्ज़ है ना, इसको उर्दू में घाटा कहते हैं, घाटा, लॉस। महक, 40 साल के बाद वो इंडस्ट्री ज़रूर डूबेगी, वो चीज़ ज़रूर बैंकरप्ट होगी, ये एक हद बताई गई है, और इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, पायदारी नहीं होती। और यूरोबिस सदकात से मुराद क्या है कि जो सदके में माल दिया जाता है या नेकियों में लगाया जाता है वो बज़ाहर हाथ से चला जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो माल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसमें एक मुफस्सिर है, शेख महमूद, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, उनकी एक किताब है इंग्लिश की, मैन एंड मनी। उसमें लिखते हैं कि तीन चीज़ें सूद के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। जितना सूद बढ़ेगा उसी कदर, नंबर एक, बेरोज़गारी, ले ऑफ होंगे लोग, जॉबलेस पीपल ज़्यादा होंगे। दूसरा, इफ़राते ज़र, इन्फ्लेशन। इफ़राते ज़र समझते हैं, इफ़रात कहते हैं ज़्यादती को और ज़र कहते हैं दौलत को, यानी माल कुछ लोगों में तो बढ़ता जाएगा और कुछ लोगों में कुछ नहीं होगा। ये सूद का बच्चा है। आप कह लें कि सूद का बेबी क्या है कि अमीर अमीर तर हो जाता है और गरीब गरीब तर हो जाता है, इसको साबित करेंगे इंशाल्लाह हम बाद में। तीसरी चीज़, इसके नतीजे में शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ता जाता है। जितना सूद की शरह बढ़ेगी उतनी बेरोज़गारी बढ़ेगी, उतना इफ़राते ज़र बढ़ेगा, और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि एक सर्कल आ जाता है, उस मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है, बैंकों की सूरत में दिवालियापन हो जाता है। और आप बड़े बड़े नाम देखिए, इस वक्त ग्लोब में नहीं हैं वो लोग, कल वो नाम पूरे ग्लोब के ऊपर छाए हुए थे, सुपर पावर्स थी, आज वो नहीं दिखते। अगर आप गौर करके देखें तो उसके अंदर यही सिस्टम है। और आज जो नाम है ना, ये चंद सालों के बाद नहीं रहेंगे, याद रखिए, ये अल्लाह का वादा है कि जहाँ ये निज़ाम आएंगे वो लोग अपनी मौत मर जाते हैं। और आज पूरी इंसानियत बिलख रही है, इस वक्त जो पूरी दुनिया में इकोनॉमी का उतार चढ़ाव आया हुआ है ना, उसकी वजह यही सिस्टम है। आज चंद नाम, चंद बड़ी बड़ी पार्टीज नाम की दिखती हैं, और गरीब छोटा ताजर पनप नहीं पा रहा ना, उसकी वजह यही सिस्टम है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह के हुक्म की बात है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह पालेगा, छोटे से सदके को अल्लाह पालता है, उसको बढ़ा देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फार नसीम, और अल्लाह ताला किसी न शुक्रे बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। ये दो टाइटल किसको दिए गए? सूदखोर को, सूद के लेन देन को। कफ्फार क्यों है वो? क्योंकि ना शुक्र है। एक लफ्ज़ होता है काफिर, और यह है कफ्फार, ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वो ना शुक्र होता है, अल्लाह ने उसको पहले ही माल दिया हुआ था, वो दूसरों का भी नहीं छोड़ना चाहता है। और असीम गुनाहगार क्यों है? क्योंकि वो दूसरों के हक पर भी डाका मारकर अपनी दौलत को जो बढ़ाता है ना, پھر اس کو گناہوں کے کاموں میں ہی استعمال کرواتا ہے۔ بظاہر لوگ کچھ سسٹمز کو دیکھتے ہیں دنیا میں ادھر ادھر پلتے پھولتے، وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں ملک کتنا اچھا چل رہا ہے، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سود سے مال نہیں بڑھتا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، اس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے جسم پہ ورم ہو جائے، سوجن ہو جائے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا، جسم پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے، ورم ہوتا ہے۔ اب ورم کی جو زیادتی ہے نا، اس سے بدن بظاہر تو بہت موٹا لگتا ہے، لیکن ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ زیادتی پسندیدہ نہیں، یہ زیادتی موت کا پیغام ہے۔ اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن وہ مال کے فوائد اور اس کے ثمرات اس سے بالکل فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ کی یہ بات بالکل سچ ہے، کبھی بھی یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہے، خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے دیا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے چلاؤں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سود ہی کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ سٹہ بازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بندہ آج کروڑ پتی ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور اگلے ہی دن کوئی ایسا سٹہ لگا کہ وہ نیچے پڑ گیا۔ سننے میں نا اپنے جو شیئرز گرتے اور بڑھتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں کہ جب لوگ صرف ایزمپشن کی بنیاد پہ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک معاملے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ بھی لوگ غریب ہو سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ آج بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال تھوڑے کم اچھے رہیں، اگلے 10 سال میں وہ بالکل غریب ہو جائے، یہ پاسیبل ہے۔ جہاں یہ تدریج ہوگی نا، تو سمجھ لیں کہ یہ فطری تدریج ہے، کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے کاروبار کے بگڑنے کی، لیکن جہاں یہ انٹرسٹ میٹر ہوں گے نا، تو اس میں رات دن کی بات ہے۔ جس کا تکا لگ گیا وہ آج رات کروڑ پتی ہو گیا، اور جس کو ایک دم منی مل گئی وہ اس کا صحیح استعمال کہاں کرے گا، اور جس کے پاس اتنی تھی جب وہ ایک دم نیچے گرتا ہے تو بینک کرپٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جا کے، آج کسی کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے گھر کے اوپر، اور آپ ایک ہفتے کے بعد دکھے تو وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ سیل پہ آ جاتا ہے، فور کلوجر آ جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی اونچ نیچ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات سمجھانے اور بتانے کے بعد دوبارہ رغبت دلاتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازیں ادا کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ دیکھیے کتنا پیارا ہے ہمارا رب، کس طریقے سے لوگوں کو رغبت دلاتا ہے۔ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں سود کا رواج عام تھا، لوگ اندر گھڑے ہوئے تھے، یعنی اتنا زیادہ یہ سود تھا کہ جس کو کہنا چاہیے کہ بنیادوں میں آ چکے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں جب سود کی حرمت کی بات کی، تو جو مسلمان تھے انہوں نے تو الحمدللہ سود کے معاملات کو ترک کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات جو تھے نا، وہ سود کی بقایا رقموں کے دوسروں پر تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً اللہ نہ کرے کہ اگر میں کسی سے سود کا لین دین کرتی تھی اور آج میں نے توبہ کی، لیکن اب میں نے بھی تو کسی کا دینا ہے نا، انہوں نے تو نہیں ابھی توبہ کی نا، یہ مسئلہ پیش ہو گیا، سود حرام ہوا۔ سچے مومنوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ختم، لیکن کچھ نے کچھ کا دینا تھا، تو جن کا دینا تھا اب وہ کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پہ ایک واقعہ پیش آیا، بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، ثا قاف یا فا، اور بنو مخزوم، یہ آپس میں سود کے معاملات پہ لین دین کرتے تھے، اور اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تجارتی سود چلتا تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہ شبہ دیتے کہ اس دور میں تو صرف وہی سود تھا جو غریبوں کو قرضے کے طور پہ دیا جاتا تھا، تو ان کا سودی معاملہ تھا۔ بنو ثقیف کے کچھ لوگوں کا سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا۔ اب ہوا کیا کہ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے، तो इस्लाम लाने के बाद उन्होंने सूद की रकम अदा करना जायज़ नहीं समझा, कि भाई अब तो समझ आ गई है, अब हम नहीं देंगे। अब बनु सकीफ के जो लोग थे उन्होंने मुतालबा शुरू किया, क्योंकि ये लोग अभी मुसलमान नहीं हुए थे मगर मुसलमानों से मुसालहत की हुई थी। लिहाजा बनु महजूम के लोगों ने इस्लाम में दाखिल होने के बाद अपनी इस्लामी कमाई को सूद की अदायगी में खर्च करना पसंद न किया। झगड़ा हुआ, मुकदमा मक्का मुकरमा तक पहुंचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात गई। ये वो दौर था जब मक्का फतह हो चुका था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का अमीर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत उताब बिन उसैद को बनाया हुआ था। उन्होंने ये झगड़ा जब देखा कि तूल पकड़ गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि मैं इस मामले को कैसे टैकल करूँ। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई थी कि या अय्युहल्लज़ीना मनु, ए लोगो अब तुम मुसलमान हो चुके हो, दाखिल हो चुके हो, तो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वज़रू मा बकी मिन अर्रिबा, और छोड़ दो जो बाकी रह गया सूद में से, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यानी हुक्म दे दिया कि अब नहीं होगा, क्योंकि अगर तौबा मुसलमानों ने की है तो जिन लोगों ने नहीं की वो एतराज़ कर सकते हैं, भाई हमारा क्या कसूर है। तो इसके लिए हम पीछे हिस्ट्री में देखेंगे कि सूद के बारे में कुछ ना कुछ बातें चलती आ रही थी। तदरीज के साथ ये कानून बना। मैं चाहूँगी कि आयतों के बाद उस पूरी तदरीज को आपके सामने रखूँ, या सिर्फ हवालों में नोट कर लें कि कई साल में अल्लाह ताला ने इस हुक्म को पूरा किया। लेकिन जो आखिरी मोहर लगी थी ना, वो खुतबतुल विदा के मौके पे लगी थी, हज्जतुल विदा का मौका था। ये वो वक्त था कि जो अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी दौर था। अब उस वक्त कुछ लोग जो मुसलमान थे उनका पैसा मक्का वालों ने देना था जो भी मुशरिक थे। समझ रहे ना, आपने तौबा की है और एक मसला ये कि आपने भी लोगों को देना है। वो तौबा शायद आसान होती है, लेकिन आप उस वक्त तौबा करें जब लोगों ने आपको लाखों देना था, तो चीखें निकल जाएंगी ना। आप कहेंगे नहीं ज़रा ये ले लूं पैसे फिर तौबा करूंगा। हज्जतुल विदा के मौके पे हालात ये थे कि मुशरिकीन ने मुसलमानों को देना था, और उस वक्त पे अल्लाह के नबी सल्लम ने वो तारीख साज खुतबा दिया था और कहा कि लोगो, ज़माने जाहिलियत के सारे सूदी मामलात जो हैं उसको मैं आज तर्क करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब जो हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास का सूद माफ़ करता हूँ, जो मैं तुमसे अब नहीं लेता। यानी उस वक़्त मुसलमान लेने वाले थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि आज के बाद यानी सूद का मामला ख़त्म, अब हर शख्स को असल रकम मिलेगी, सूद की जायद रकम ना मिलेगी, और ना तुम ज्यादती करके किसी पर जुल्म करोगे, और ना कोई रासुल माल में कमी करके तुम पर जुल्म कर सकेगा। और सबसे पहले जो सूद छोड़ा था वह अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब का सूद है, जिसमें बहुत भारी रकमें गैर मुस्लिमों के जिम्मे बतौर सूद के आयद होती थी। तो अल्लाह ताला ने इस बात को बता दिया कि अगर आज तुम्हारी तौबा से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो जिस वक़्त ये हुक्म शुरू हुआ था तो मुसलमानों ने अपना नुकसान करके किया था। इससे क्या पता चलता है कि फिर ऐसे मौके में सिर्फ असल रकम दी जाएगी, जो पिछली चीज़ें उनको बताया जा सकता है। लेकिन वही बात है ना कि जब हम खुद अपने दीन को नहीं समझते और नॉन मुस्लिम से इस बेस पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर पहले तो उनके सामने इकरारे जुर्म करना होगा ना, कि हमें पहले अपने इस्लाम का भी पता नहीं था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात कह के ये बता दिया, एक जनरल सा असूल समझा दिया कि तौबा का अमली तरीका क्या है। यानी पिछली आयत को हमने ज़्यादा खोल के नहीं देखा, लेकिन उसमें खुलासा क्या था कि ईमान और अमल सालेह का तकाजा क्या है कि बंदा अल्लाह के हुक्मों को माने। और वहाँ आप देखिए कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की आयत को, पहली आयत जो सूद के बारे में थी कि खपती बन के वो शख्स उठेगा, उससे टैली करके देखे, और उससे ऊपर भी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की बात थी ना। क्या पता चला कि सूद से जो चीज़ बंदे की सबसे पहले चाहती है ना, वो उसका अमन चैन सुकून चला जाता है। उसको लेना है ईमान, फिर अमल सवाले, फिर नमाजें, फिर ज़कात की अदायगी। सूद लेने देने की बजाय ज़कात दो तो अल्लाह ताला तुम्हें खौफ से खाली कर देगा। फिर बाद में बात कर दी कि आप जो पिछली पेमेंट्स हैं उनको टैकल कर लो। अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर जब आ जाएगा तो इंसान दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं देखेगा। और यहाँ फिर वही बात कहूँगी कि इस्लाम की ये इम्तियाजी शान है कि लोगों को सिर्फ कानून नहीं दिए, लॉ नहीं सिखाया, बल्कि दिल सोजी भी की। इत्तकुल्ला का जो लफ्ज़ है ना आयत 278 में, ये इस बात की दलील है कि हुक्म सुना के बता के भी फायदा नहीं होता जब तक अल्लाह का डर लोगों के दिलों में ना आए। आज अब किसी को अगर ऐसे लेन देन में देखते हैं ना, तो उस पे बात करने से पहले उसके अंदर तकवा का बीज डालिए, कोई ऐसी चीज़ उसके लिए अवेलेबल कीजिए जो उसको अल्लाह का खौफ सिखाए, अल्लाह की मोहब्बत सिखाए, अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास दे। तकवा के बगैर किसी को ये कहना सूद छोड़ दो, ये तो ऐसे ही है कि जैसे बच्चे के हाथ से ज़बरदस्ती छुरी छुड़ाना, वो छोड़ेगा भी नहीं, हाथ उसका भी ज़ख्मी होगा, चोट आपको भी लग सकती है। तो तकवा जो है वो छुड़वाता है। और इस आयत से ये भी पता चलता है कि इन कुंतुम मोमिनीन, यानी ईमान का तकाजा है कि बंदा फिर सूद को छोड़ दे। मुफसरीन कहते हैं कि असल हुक्म क्या था, इस आयत पे ही नज़र रखिए 278 पे, वज़रू मा बकिया मिन रिबा, असल हुक्म यही है ना, छोड़ दो जो पीछे रह गया सूद में से। कहते हैं कि इससे पहले इत्तकुल्ला और इसके बाद इन कुंतुम मोमिनीन की ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये हुक्म बड़ा सख्त लगा लोगों को, तबीयतों पे बड़ा बोझल था। तो कह दिया देखो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी तुम्हारे ईमान के मुनाफी है, तो ईमान है तो फिर तुम्हें ये हुक्म मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद 5वीं आयत इस मज़मून की, सब कुछ पता चल गया, लेकिन इसके बाद फ़इल्लम तफ़लू, बस अगर तुम ना करो, क्या ना करो, इसका इशारा है वज़रू पे, यानी ना छोड़ो। लम तफ़लू इधर के ना छोड़ो ये काम, ये लेन देन, तो फ़ज़नू बि हर्ब मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर तैयार हो जाओ, आगाह हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए। एक स्ट्रेच में तर्जमा क्या होगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। ये है इतनी बड़ी बात, और मुफस्सरीन ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि पूरे कुरान पाक में जिस जुर्म पे सबसे बड़ी धमकी दी गई है ना, वो सूद है। क्योंकि किसी और गुनाह पे ये नहीं कहा कि फ़ासनु बिहरब मिनल्लाहि व रसूली, कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। और बाज़ रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लेन देन करने वालों के हाथों में तीर देंगे और उन्हें कहेंगे आओ अल्लाह के साथ मुकाबला करो। कर सकता कोई? नमरूद ने कोशिश की थी ना, उसने हज़रत इब्राहिम के साथ मुनाजरे में ये कहा था कि मैं भी अपनी फ़ौजें ले आता हूँ और तुम अपने रब को भी को ले आए, तो मुकाबला कर लेते हैं, जिसके लश्कर जीत गए वो खुदा है। कहा ठीक है, ले आओ जिसको लाना है, जो ला सकता था ले आया, फ़ौजें जमा हो गई। और अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में सिर्फ मच्छरों की फ़ौज भेजी थी, मॉस्किटोज़, क्योंकि अल्लाह के लश्कर हैं, सारे अल्लाह के जुनूद हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाती। और इतने मच्छर आ गए थे कि चंद मिनटों सेकंडों में उसकी पूरी फ़ौज को चाट के रख दिया, गोश्त और हड्डियां अलग कर दी। रिवायात में आता है कि सूरज की रोशनी छुप गई थी, इतने मच्छर आ गए थे दुनिया में, और उन्हीं में से सिर्फ एक मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया था और इसके ज़रिए से सर में गया। कई साल, सही नाम तذکرہ करने की ज़रूरत भी नहीं, कई साल तक वो मच्छर उसके दिमाग में घुसा रहा, और इतनी तकलीफ़ उसको होती थी कि अपने सर पे जूतियां मरवाता था, और बिलाखिर उसी मच्छर की वजह से वो मरा। अल्लाह इतने बड़े तागूत को एक मच्छर से मरवा सकता है, क्यों? कि जिस अकल में अल्लाह का हुक्म नहीं समाता ना, फिर वो अल्लाह के आगे इतनी बेबस कर दी जाती है कि सिर्फ एक मच्छर भी उसके लिए काफ़ी है। यहाँ वही बात कह दी कि अगर अभी भी नहीं मानते तो फिर अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है कि देखो तुम उसके सामने बच नहीं सकोगे, तुम उसकी बात को मान जाओ, नहीं मानते तो फिर छोड़ो। और ये आयतें नाजिल हुई थी ना, इसके बाद फिर कानूनन सूद एक जुर्म करार दे दिया गया था मक्का में, फौजदारी जुर्म, मतलब जिस पे फौज कशी भी हो सकती है। और फतह मक्का के बाद ये आयत नाजिल हुई थी और इसमें फिर कानूनन बंद कर दिया गया और बता दिया गया कि कोई मुल्क अगर अपने आप को इस्लामी मुल्क कहता है तो उसकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लेन देन को बंद करे। और अरब के जो कबीले सूद खाते थे उनको अल्लाह के नबी अपने उमाल के ज़रिए से आगाह करते रहे। उमाल वो लोग होते हैं जो लोगों से ज़कात का माल जमा करने जाते हैं, और ये सब गए और उन्होंने उनको बताया कि देखो छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर हम तुम्हारी तरफ लश्कर कशी करेंगे। यानी अल्लाह के नबी के दौर में अगर कोई डंगे की चोट पे ये कहता था ना कि हम ये काम करेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसकी तरफ अपनी फ़ौजों का रुख भी कर सकते थे। और आज भी यही हुक्म है, लेकिन आज जिस माशरे में हम सांस ले रहे हैं वहाँ तो लगता है कि कहानी बिल्कुल इससे उलट है। तो यहाँ यही बात कह दी गई कि छोड़ दोगे तो बेहतर है, वइन तुब तुम, अब तौबा करते हो, नहीं करना चाहते ऐसी चीज़ों को, तो अब क्या है, एक सवाल है ना, अब तौबा करें तो कहाँ जाएं। बस एक शख्स है, उसका पूरा लेन देन ही इस मामले में था, आज तौबा करता है तो क्या करे, सड़क पे खड़ा हो जाए जाके, कोठी में से निकल के कहीं तिनकों की कोठरी डाले, नहीं, वइन तुब तुम, और अगर तुम तौबा करो तो क्या है, फलकुम रुउस अमवालिकुम, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल है। ये है अल्लाह ताला का इंसाफ। वो पीछे याद करो जब पहले दिन काम शुरू किया था, इंटरेस्ट से पहले जो तुम्हारी असल मनी थी ना वो अब भी ले सकते हो, और जो खा चुके हैं ले चुके हैं उसका क्या मामला है, इलाल्लाही, अल्लाह की तरफ अमर है, पढ़ चुके ना मा कद सलफ, पीछे जो गुजरा उसका मामला अल्लाह के साथ है, अब जो करोगे उसमें से सिर्फ अपने लिए ले सकते हो। पीछे का क्या मामला था, फलहु मा सलफ यवामरुहु इलल्लाह, अब क्या है, फलकुम रुउस अमवालिकुम, तुम्हारे असल माल है। ये क्यों इजाजत दी, इसलिए कि ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम किसी पे जुल्म करो और ना कोई तुम पे जुल्म करे। तुम किसी पे जुल्म कैसे करोगे, किसी के साथ किसी से उस सूद पे माल लेकर, और तुम पे जुल्म किया है अगर तुम्हारा असल भी ना तुम्हें दिया जाए। देखिए कितने साल के बाद भी अल्लाह ताला याद दिला देते हैं कि ये पाक था और इसमें इतना नापाक मिल गया। इंसान को पता भी नहीं चलता कि मेरी असल कहाँ पे रुकी और मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, लेकिन अल्लाह ताला खोल के बता देते हैं कि पिछली जिंदगी में से वो सारी चीज़ों को तुम देख लो, जो असल थी वो ले लो और बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं उसको छोड़ दो। इससे क्या पता चलता है, एक बहुत प्यारा नुक्ता है, मुफस्सरीन कहते हैं कि इस आयत से पता चलता है कि अगर कोई तौबा ना करे, इन तुब तुम की बात थी ना, ये शर्त है, यानी अगर सूद छोड़ने का अज़्म करके तौबा ना की तो फिर असल माल भी नहीं मिलेगा। यानी असल माल लेने की शर्त तौबा है, तौबा नहीं करते तो फिर असल भी नहीं मिलेगा। यानी कोई मुसलमान होने के बाद भी सूद को अगर हराम ना समझे, इस सूद छोड़ने के लिए तौबा नहीं करता, तो फिर तो वो शख्स इस्लाम से निकल गया, क्योंकि मुर्तद हो गया और मुर्तद का माल उसकी मिल्कियत से निकल जाता है। फिर जो ज़माने इस्लाम की कमाई होगी वो इसके मुसलमान वारसों को मिल जाएगी, और कुफ्र के बाद की जो कमाई होगी वो बैतुल माल में जमा होगी। यानी उसके लिए तो फिर बस एक आगे कई रास्ता इस दुनिया में उसकी जगह नहीं है। तो बहरहाल ऐसा शख्स अगर अपने साथ कुछ और लोगों को मिला ले, ग्रुप बना ले और ऐसी इस्लामी हुकूमत के खिलाफ जत्थेबाजी करे, तो वो हुकूमत फिर उसका मुकाबला करेगी और इसको बागी करार देगी, इसका माल जब्त होगा, बैतुल माल में अमानत के तौर पे रखा जाएगा। हाँ जब तौबा करेगा तो असल माल वापस दे दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात कहने के बाद एक और कानून दिया। अब यहाँ पे दरअसल सूद का मामला पूरा हुआ, अगली आयत में क्या है, वइन कान ज़ू उसरतिन, और अगर हो वो तंगी वाला, कौन, ब्रैकेट में लिखिए कर्ज लेने वाला। अमूमन सूद का लेन देन जो होता था माजी में वो कर्जदार को सूद देना पड़ता था, यानी वो लोग जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कर्जे लेते थे, तो गरीब को ना सिर्फ ये कि सदका दे के कुछ दिया जाए, जो बड़े बड़े दौलतमंद रईस थे वो सूद की शर्तों पे कर्ज देते थे। ये आम मारूफ किस्म है सूद की, कि किसी को सूद दिया जाता था उसके कर्ज पे। मिसाल देती हूँ कि एक गरीब औरत है, घर में काम करती है, कोई ऐसी ज़रूरत आ गई कि उसको 2,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, वो कहती है कि बाजी मुझे 2,000 रुपये दे दें। एक काम था हुक्म, सदकात का खुलासा क्या है? अगर आप इस्लामी निज़ाम डालते हैं तो मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि किसी को 2000 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी इस्लाम का वो निज़ाम ला के देखें बैलेंस, तो गरीब अमीर हो जाएगा और जो बहुत बड़ा करोड़पति है ना, वो थोड़ा नीचे आएगा और दौलत बिल्कुल बैलेंस रहेगी। दूलतुम बैनकुम, आगे लफ्ज़ आएगा कि दौलत अल्लाह ताला कहते हैं हाथों में खेल ले सबके पास। उन सूद का ये तोहफा है कि अमीर इतना अमीर है और गरीब इतना गरीब है। चंद नाम जो है वो मार्केट में अपनी मोनोपोली बना के बैठे हुए और बाकी दूसरी तरफ है, ठीक है। तो अब वो मिसाल है कि औरत गरीब है, ये वजह क्या है? इसी सिस्टम की वजह है कि सदकात जब नहीं दिए जाते तो लोगों में गुर्बत आती है। अब एक हुक्म ये था कि इसको 2000 दे दो और को अच्छा जब होगा तो दे देना। पहला सबसे आसान अमल था कि उसको ऐसे ही दे दो, सदका कर दो। नहीं कर सकते, हर बंदे के पास नहीं होता। दूसरी उससे नीचे की बात क्या थी कि तुम उसको दे दो और शर्तें कर लो कब दोगे। ये अगले ही सबक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कर्ज के मामलात और जिसमें ये सब क्रेडिट्स के मसाइल और ये सारी चीज़ें आगे आएंगी इंशाल्लाह ताला। ये दूसरी बात थी कि उससे कह दो भाई ये 2000 कितनी किस्तों में दोगी, इंस्टॉलमेंट्स में दोगी, वट एवर। लेकिन अल्लाह ताला इससे भी आगे लेके जाता है कि उसने कर्ज दिया, उसने कहा हाँ बाजी ये 2000 दे दो, मैं अगले 3 माह की तनख्वाह में कटा दूंगी। अब 3 माह गुजर गए, अब आप क्या कहते हैं कि किधर हैं पैसे? तो वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, कहते हैं भाई कहाँ से लाऊं और इतनी ज़रूरतें। तो उसके लिए अल्लाह कह रहे वह इन का ना जू उसरतिन, वो शख्स जिसने तुमसे कर्ज लिया था, कर्ज उससे वापस लेने के वक्त तुम अगर देखते हो कि वो तो बहुत तंगी वाला है, वो कहाँ से देगा 2000, उसके तो बेचारे के घर में खाना भी नहीं है। तो फनजीरतुन इला मईसरा, तो मोहलत दे दो उसके कुशादा होने तक, मईसरा युसर से आसानी तक, यानी तुम एहसान का मामला करो। एक तरफ पीछे सूदखोर की बात थी कि वो खून निचोड़ रहा है, और इधर क्या कहा जा रहा है कि जिसने तुमसे कर्ज लिया हुआ है उसको मोहलत दे दो। और मोहलत दे दो, चलो तुमने कहा था 3 माह बाद ले लोगे, आप कह दो नहीं अच्छा चलो और 3 माह का वक्त ले लो, 6 माह के अंदर दे दो। और अगर तुम और भी अल्लाह की नज़रों में बड़ा बनना चाहते हो ना, तो वन तसद्दकू, और अगर तुम सदका ही कर दो उसको, को मैंने क्या करना है 2000 लेके, जाओ मैं इसको अल्लाह के लिए सदका करती हूँ। तो फरमाया खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। असल ये बेहतर है, लेकिन इंसान को ये बात समझ नहीं आती कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उससे और ज़्यादा लेने की बजाय उसको माफ़ कर दो। इसमें बहुत ही प्यारी रिवायात आती हैं कि जिसको आपने कर्ज़ दिया है उसको मोहलत दें, और उस मोहलत के नतीजे में आपको मिलेगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी शऊर के साथ आयतें पढ़ी है ना, तो उसको लोगों को कर्ज देने की आदत तो हो गई है। और वो क्या है कि आप किसी को कर्ज देते हैं ना, वक्त पे वो नहीं दे सकता, तो हर दिन उतना ही पैसा या माल सदका करने का अजर आपके नामे अमाल में होगा। मैं तो इस पे पूरे शऊर और खुशी से कह सकती हूँ कि कोई भी मुझसे कर्ज लेने आए लिखे और साथ ही बता दे कि मैं 1 माह बाद दूंगा, और फिर मुझे ना दे तो मेरे लिए हर दिन उतने ही पैसे सदके के मिलेंगे। कर्ज की बहुत सारी बातें अगले रुकू के साथ भी आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो कहा कि उसको माफ़ कर दो, तंगदस्त के ऊपर रहम करो। एक तरफ तो तुम उसका खून चूस रहे हो और दूसरी तरफ तुम उसके साथ यानी इतनी नरमी का मामला कर रहे हो। गरीब भाई है, तुम्हारे जैसा इंसान है, तुम उसको छोड़ दोगे अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेगा, फिर ये कर्ज कर्ज़े हसना बन जाएगा जो तुम्हारे लिए आखिरत में ज़खीरा बन जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें उसका बेहतरीन अजर देगा, उसका काम चला दो, उसके लिए अच्छे तरीके से मामला करो, क्योंकि एक दिन आने वाला है और वो कौन सा दिन है? वत्तकू यौमन तुरजाऊ नफीही इलल्लाह, और डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम फेरे जाओगे अल्लाह की तरफ। सुम्म तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर हर नफ्स को पूरे का पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया होगा, और किसी पर जुल्म ना होगा। कितनी मीनिंगफुल आयत आई है इस मौजू पे, और ये आयत कुरान पाक की नज़ूल के एतबार से आखिरी आयत है, तरतीब के एतबार से। इस आयत के कुछ ही दिन के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था। کہا کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے نا، وہ پھر ضرور ہی لوگوں کو مہلت دے گا اور لوگوں کے لیے نرمی کی بات سوچے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت کی بہتری چاہنے والے دنیا کے بہت بڑے بڑے نقصان کو بھی دل کی خوشی سے مان جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیں دنیا میں جینے کے طریقے سکھائے، اس کے پاس ہم جائیں گے اور اس کے سامنے کھڑے کرے جائیں گے کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ آج اگر دنیا میں کسی نے تمہارا حق مارا تھا، آؤ میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا تھا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اس کے بدلے میں آخرت میں اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس چیز کو واقعی صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا دل دے گا اتنی ہی قیامت کے دن ہمیں وسعت ملے گی۔ طبرانی کی روایت نوٹ کر لیں، آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح وہ روایت بھی نوٹ کر لیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص کسی مفلس قرض دار کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس کے ذمے واجب تھی، اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے گی اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ دل چاہتا ہے نا قرض دینے کو، لینے والوں میں سے بننا چاہتا ہے بندہ کہ دینے والوں میں؟ اور مسلمان کا مال یا تو اپنے فائدے کے لیے یا دوسرے کے لیے، اس لیے اگر آپ نے کہیں بھی اپنے مال رکھے ہوئے نا جمع کر کے، رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو انویسٹ کر لیں دوسروں کو قرض دے کر، لون فری۔ ان آیتوں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا جب ہم آر کے پی کلاس میں تھے، کہ کسی طریقے سے لوگوں کے لون چھڑائے جائیں۔ ابھی بھی آن لائن پہ اس کی انفارمیشنز ہیں، لیکن چونکہ اس کے کئی مراحل ہیں، بگ پروسیس ہے، تو اس پہ کئی باتیں عملی طور پہ ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرض خواہ کو مہلت دے دے۔ جو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے 31 یعنی 31 ڈیز، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 9 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ آیتیں پوری ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں ابسوط کے اوپر اگلی آیتوں کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اب اس سے اگلی آیتوں کو بھی ہم ساتھ لیں گے، کیونکہ قرض اور سود کا باہمی تعلق ہے، بلکہ قرآن پاک میں اور بھی دو جگہوں پہ جہاں یہ بات ہے، تو اس کی روشنی میں آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سنیں گے۔
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون